समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।
नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। आज का दौर डिजिटल क्रांति का दौर है, जहां तकनीक हर दिन नई संभावनाएं और उम्मीदें तो लेकर आ रही है, लेकिन अपने साथ कई अनचाहे खतरे भी। हम आज बात करने जा रहे हैं एक ऐसे खतरे की जो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन हमारी पहचान, प्रतिष्ठा और सुरक्षा को गहराई से प्रभावित कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI ने हमारी जिंदगी को आसान बनाया है, लेकिन इसके साथ एक नई चुनौती भी सामने आई है, डीप फेक। आज के समय में ये शब्द काफी चर्चा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में इस गंभीर चुनौती से निपटने का आह्वान किया। आखिर क्या है ये डीप फेक, ये किस तरह से हमें नुकसान पहुंचा सकता है, और सबसे अहम सवाल, हम खुद को और अपने परिवार को डीप फेक जैसी तकनीक से कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। आज इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर हम चर्चा करेंगे। विषय है AI के युग में डीप फेक से सुरक्षा के उपाय। हमारे साथ चर्चा के लिए आज हमारे साथ दो विशेषज्ञ हैं स्टूडियो में, साइबर लॉ विशेषज्ञ डॉक्टर पवन दुग्गल जी और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप गिरधर जी। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
धन्यवाद।
श्रोताओं, आप भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं हमारे साथ। आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर है 0112342105 और 0112331444। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं, नंबर है 9289094044। आप सोशल मीडिया साइट एक्स पर #AskAIR के जरिए भी अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। तो आपसे सबसे पहले सवाल जानना चाहूंगी डॉक्टर दुग्गल जी, डीप फेक तकनीक वास्तव में है क्या, अगर सरल तरीके से जानना चाहूं तो?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नए प्रकार की टेक्नोलॉजी है जो अलग अलग एप्लीकेशंस संभव बना पाती है। उन्हीं में से एक एप्लीकेशन है डीप फेक। यानी कि डीप फेक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो जिसके माध्यम से आप एक झूठा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाते हैं और इस बखूबी तरीके से बनाते हैं ताकि आपकी आंख देखकर ये पहचान ना पाए कि ये असल में है या इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बनाया है। देखिए, पहला टाइम होता था जहां पर ये झटके वाली टेक्नोलॉजी थी, धीरे धीरे झटके खाती थी तो आपको देख के पता लग जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय का आभास हुआ, नई टेक्नोलॉजीज में एवोल्यूशन आया, तो अब ये टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इवॉल्व हो चुकी है। अब वो जमाने चले गए कि साहब आप कोई आलिया भट्ट होंगे, रश्मिका मंदाना होंगे या कटरीना कैफ होंगे, तभी आपका डीप फेक बनेगा। आज तो वो दौर आ गया है जहां पर आपका, मेरा, हम सब का डीप फेक बन सकता है। क्यों? क्योंकि डीप फेक को बनाने वाले जो फ्री टूल्स हैं आज इंटरनेट पर उपलब्ध हैं।
बिल्कुल डॉक्टर अनूप, जैसे डीप फेक तकनीक की मदद से किसी की भी आवाज, चेहरा या वीडियो को इतनी सफाई से बदला जा सकता है कि असली और नकली में फर्क करना शायद मतलब असंभव है।
जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि AI टेक्नोलॉजी जो चलती है वो एक टेक्निकल कंसेप्ट पे चलते हैं, जिसे हम आम भाषा में LLM बोलते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। और आज बहुत सारे मॉडल्स AI के उपलब्ध हैं, जिसकी वजह से आप जैसा भी कंटेंट, अब कंटेंट हमें कहाँ से मिलता है, ये कंटेंट हम लोगों का ही कंटेंट है। तो आपका फोटो, आपका ऑडियो, आपका HD वॉइस, वीडियोस, उसी कंटेंट को लेके यदि कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जैसे वॉइस क्लोनिंग एप्लीकेशंस, जैसे आप डीप न्यूरल नेटवर्क्स टेक्निकली हम बोलें तो, कुछ स्पेशल टेक्निकल टर्म्स हैं जैसे हम जेनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क्स, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिसके बेसिस पे ये टूल्स बने बनाए टूल्स हैं, तो यूज करना बहुत आसान है। जैसे अभी दुगल जी ने भी बोला कि फ्रीली अवेलेबल है, तो बस आपको उसमें इंफॉर्मेशन अपनी डालनी है, तो वो बेसिक इनपुट है, बने बनाए पीछे मॉडल्स हैं, और उसकी वजह से कोई भी नया कंटेंट बनाया जा सकता है। इट्स अ पार्ट ऑफ अ जनरेटिव AI।
बिल्कुल, एक तरह की प्रोग्रामिंग सेट की गई है, तो आप डालेंगे तो आपके पास सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। सबसे पहले हमारे श्रोता जुड़े हैं हरिद्वार से, रवि जवालिया जी। नमस्कार रवि जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम।
नमस्कार जी। टूटी फूटी मेरी झोपड़ी, कच्चा मेरा मकान, गर्मीरपुर में रहने वाला हूँ, रवि जवालिया मेरा नाम।
जी बहुत बढ़िया, अपना सवाल पूछे।
जी मैम, मैं जानना चाह रहा था कि डीप फेक क्या होता है, इसका तो आंसर मुझे मिल चुका है। मैम हम ये कैसे पहचाने कि कोई भी टेक्नोलॉजी वो डीप फेक में कन्वर्ट है या नहीं?
डॉक्टर नूप क्या कहेंगे?
जी रवि जी नमस्कार। तो आपका सवाल बहुत वाजिब है और आज की डेट में पब्लिकली हमें किस तरीके से पता चले, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे, पहली चीज डीप फेक कैसे बनता है, आपको बताया कि फ्री टूल्स हैं, लेकिन आज भी जितना मर्जी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया हो, आज भी उसमें कुछ गैप्स, कुछ पैटर्न्स हमें नजर आते हैं। जैसे अब आपको साथ मैं बात कर रहा हूं, मेरी वॉइस का एक रिदम है, एक सिंक्रनाइजेशन है, लेकिन इसी को अगर मैं रोक रोक के, हर वर्ड को, हर शब्द को एक एक करके रोक के बोलूंगा तो आपको उसमें गैप्स नजर आएंगे। इस तरह का कोई वीडियो या ऑडियो आपको मिलता है, पैटर्न्स अलग मिलते हैं, बैकग्राउंड चेंजेस मिलते हैं, तो अभी भी एआई की एक्यूरेसी उस लेवल के लिए नहीं है, लेकिन जैसे अभी दुगल साहब ने भी बताया कि वो अब हमेशा ऐसा रहने वाला नहीं है। ये आज के लिए तो आप आइडेंटिफाई फिर भी कर पाएंगे, लेकिन आने वाले समय में इसका आइडेंटिफिकेशन मुश्किल होने वाला है पब्लिकली। तो एक ये चीज, दूसरा इसको रोकने का हमारे पास और तरीके लेने हैं। जैसे आप कभी भी अपना डेटा, भाई अगर आप सेलिब्रिटी हैं तो आप तो अपना डेटा ऑनलाइन डालेंगे ही, तो उनके लिए अलग सॉल्यूशन है हमारे पास, भाई आप वाटर मार्किंग कीजिए डेटा पे, अपने कॉन्टेंट पे, और मिस इन्फॉर्मेशन ना आए उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ बैक ग्राउंड्स वाटर मार्किंग जिसे हम बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, और इवन ऑथेंटिकेशन डालिए, तो वो उनके लिए है। लेकिन बीइंग पब्लिकली आप लोगों को क्या करना है, पहले उनका पैटर्न्स को देखना है, दूसरा यदि आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आती है और आपको दिखता है कुछ भी डाउट लगता है, कुछ भी अननोन लगता है, कुछ भी डिफरेंट लगता है, तो यदि ऐसी कोई भी चीज नजर आए तो उस पर पहली चीज यकीन नहीं करना है। वो यकीन नहीं करना है, आपको उसका लिंक निकालना है, URL निकालना है, और उसकी रिपोर्टिंग, उसका इंसिडेंट रिस्पांस का एक प्रोसेस है पूरा, आपको रिपोर्ट करना है। जैसे आपको पता भी होगा cybercrime.gov.in और ऐसे और भी पोर्टल हैं जहां पर आप इन सब चीजों को रिपोर्ट भी कर सकते हैं।
हमारे दूसरे श्रोता हैं शिमला से, योगेश जी।
नमस्कार प्रियंका जी।
नमस्कार योगेश जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल क्या है आपका?
जी AI जैसे डीप फेक का यूज करके अगर वीडियो या ऑडियो की मॉर्फिंग की जाती है हमारी असेंट के बिना, तो इसके स्प्रेड को कैसे रोके और कैसे बताए कि ये AI जनरेटेड डीप फेक्स है, और इस पर क्या कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है? और ये तो वो केसेस है जिनका हमें पता है कि ये डीप फेक्स है, तो जैसे सर ने बात की थी रिदम और पैटर्न्स की, वो इस केस में लागू होता है जब हम व्यक्ति को जानते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को नहीं जानते, उसकी आवाज नहीं पहचानते और उसकी AI डीप फेक्स बना दिया गया हो, तो हम उसको कैसे पहचाने ताकि ये सब डीप फेक आगे हम प्रोपेगेट ना करें, पहले ही प्रिकॉशन ले।
धन्यवाद
जी।
देखिए ऐसा, आज की तारीख में आपको एक नई आदत डालनी पड़ेगी, वो आदत है शक होने की। क्यों? क्योंकि हर चीज जो आप देखते हैं उस पर शक के दृष्टिकोण से देखेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि जब तक शक के बाद आप उसकी पुष्टि स्वयं ना कर पाए तब तक किसी भी चीज पर अब विश्वास करने का दौर चला गया है। क्यों? क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, आजकल डीप फेक का, फेक न्यूज का, फॉल्स रूमर्स का दौर है, तो अधिकांश तौर पर आप जो देखेंगे संभावित तौर पर सही आपको जानकारी नहीं मिलेगी। अब सवाल आपका कि पता कैसे लगाएं। अब देखिए, पता लगाने के लिए तो आपको जागरूक होना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, अपनी आंखों और कानों को ध्यान से गढ़ना पड़ेगा उस कंटेंट को। कई बार क्या होता है कि जब ये डीफेक कंटेंट आता है, ध्यान से देखेंगे लिप मूवमेंट में थोड़ी बहुत डिले नजर आती है, आंखों की मूवमेंट में कुछ डिले नजर आता है, ध्यान से देखेंगे तो लगेगा ये बंदा कर क्या रहा है, तो वो आपको इंडिकेशन दे सकता है कि शायद ये डीप फेक है या नहीं। आजकल कुछ ऐसे टूल्स भी आ गए हैं कि आप इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड उस टूल को दीजिए और टूल बताएगा कि साहब इसमें डीप फेक की क्वांटिटी कितनी है या कितनी नहीं है। लेकिन संभावित तौर पर आज सरकार इस दिशा में काफी हद तक कार्यरत है, तभी 20 फरवरी 2026 से केंद्र सरकार ने अब एक नए रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन प्रारंभ कर दिया है, जिसे हम बोलते हैं डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। तो एक और चीज हो गई थी, लेकिन ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल्स 2016, यानी कि आईटी अमेंडमेंट रूल्स 2016। इसमें मुख्य तौर पर सरकार कह रही है कि साहब, अगर आपको पता लगता है कि आपका कोई डीप फेक बना है और वो अश्लील है, कानून का उल्लंघन करता है, आपकी छवि को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, तो आपको अधिकार है कि आप सरकार को शिकायत करें, और सरकार के पास अधिकार है कि वो दिशा निर्देश देगी सर्विस प्रोवाइडर्स को कि साहब इसको 3 घंटों में आपने रिमूव करना है, और अगर वो 3 घंटों में ये कॉन्टेंट रिमूव नहीं करेंगे तो जो कानूनी सुरक्षा कवच उन्हें कानून प्रदान करता है, स्टैट्यूटरी एग्जेम्पशन फ्रॉम लीगल लायबिलिटी, वो उनसे छीन लिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं अब क्योंकि इतना ज्यादा प्रचलन हो रहा है एआई द्वारा जनरेटेड कंटेंट का, तो अब ये नए रूल्स कहते हैं कि साहब जब कोई एआई से जनरेट कोई कंटेंट करेगा तो उसको लेबल करना पड़ेगा कि साहब ये मैंने नहीं बनाया है, ये एआई ने बनाया है, और वो लेबल इस तरीके से होना चाहिए ताकि संभावित तौर पर सारे लोगों को पढ़ सके, देख सके, उन्हें एडवांस नॉलेज हो सके, चेतना मिल सके कि साहब ये किसी इंसान ने नहीं बनाया, एआई ने बनाया है। क्यों? क्योंकि लोग इस पर ज्यादा रिलाय ना करें, साइबर फ्रॉड के शिकार ना बन सके। तो ये रूल्स आएंगे तो ऑब्वियसली इसके साथ मैं सोचता हूँ कुछ सुचारू रूप से इफेक्टिव रेमेडी आपको मिलेगी, लेकिन अल्टीमेटली देखिए रेमेडी कुछ भी हो जाए आपको सतर्कता तो खुद ही निपटनी है। कुछ चीज ऐसी है जो झटके नजर आए, जो लगे कि साहब ये ठीक नहीं है या टू गुड टू बी ट्रू है, तब वो संभावित तौर पर आपको इंडिकेशन देगी कि साहब ये डीप फेक द्वारा जनरेट जानकारी है, इस पर रिलाय ना करें।
बिल्कुल, शक करना आप सबसे पहले सीखे, ये इंसान ऐसे तो नहीं बोल सकता, ये ऐसे तो नहीं हो सकता। जैसे ही क्वेश्चन मार्क आपके जहन में आए तो आप जो पोर्टल है या नंबर है शायद 1930 उस पर कंप्लेन करें। तो इस तरह की किसी भी आपके पास क्वेरी हो, शक हो, तो आप यहाँ पर संपर्क करें, और जो आपका जो जिज्ञासा है, जो अगर आप में संशय है, तो आप उससे निजात पा सकते हैं। अगले श्रोता है शिमला से राकेश जी।
जी नमस्कार।
नमस्कार
जी, मेरा एक सवाल है, जैसे दृष्टि बाधित लोग है और डीप को कैसे पहचान सकते हैं और कैसे वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ये मेरा सवाल है।
जी डॉक्टर अनूर
जी, बहुत बढ़िया सवाल है
जी।
देखिए ऐसे में आप लोगों के पास तो पहले ही बहुत अलग अच्छी पावर है सुनने की
जी,
क्योंकि अगर आप दृष्टि बाधित हैं तो कोई बात नहीं, ये एक अलग है, क्योंकि जो देख रहे हैं वो भी नहीं पहचान पा रहे हैं, तो वो तो और ज्यादा दिक्कत है, बल्कि आप लोग तो और ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं क्योंकि आपके पास एक एक्स्ट्रा पावर है सुनने की। और यहाँ पर जब आप सुनेंगे कोई भी चीज तो आपको अपने आप कुछ गैप्स नजर आएंगे, जैसे बोला आवाज में, टोन में, और आपके हम्बलिंग आवाज आती है, जैसे बीच बीच में रुक रुक के आपको नजर आएगी या एक कंटिन्यूटी में नहीं नजर आएगी, और आपको जो कंटेंट है, कंटेंट पे जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि शक कीजिए, देखिए क्या सच में वो पर्सन ऐसा बोल सकता है या नहीं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जैसे आप सुनेंगे, जब आपको ये चीज समझ में आएगी तो आपको अपने आप गैप नजर आएंगे, यहां तक कि एक और चीज होता है जब कोई आदमी बोलता है, आज अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरा बोलने का भी एक पैटर्न होगा, मैं कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो शायद रिपीट करूंगा, या बोलने से पहले कितना गैप लेता हूं, किस तरह से होता है। तो अगर आप कोई एग्जिस्टिंग ट्रू ऑडियो या कोई ऐसा वीडियो आपने सुना हो जो पहले से आपको लगता है ये जेन्युइन था, उसको अगर आप डीप फेक के साथ ऑडियो या वीडियो के साथ कंपेयर करके सुनेंगे तो अपने आप आपको गैप्स मिलने शुरू हो जाएंगे।
वो जैसे एक श्रोता ने पूछा था कि अगर जिसकी आवाज पहचानते हैं वो तो हम समझ सकते हैं, लेकिन जिसकी आवाज हमें पता ही नहीं हो और जिसके बारे में, व्यक्ति के बारे में जानकारी ही ना हो, तो ऐसे में क्या, कैसे आवाज पहचान?
ऐसे में वैसे तो टूल्स आते हैं इसके, जैसे मैंने आपको टेक्निकली भी बताया इसके प्रॉपर टूल्स हैं। हम लोग डीप फेक और न्यूरल नेटवर्क से, जैसे एआई से अगर कोई वीडियो बनाए तो बड़ा सिंपल है, एआई ही उसको डिटेक्ट भी करेगा। इसके प्रॉपर फॉरेंसिक्स टूल्स हैं, इन्वेस्टिगेशन टूल्स हैं, और बेसिक ओपन एंडेड टूल्स भी अवेलेबल हैं। यदि हम ऐसे ऑडियो को उसमें डालते हैं तो आपको उसका पूरा पैटर्न, उसके लेवल ऑफ एक्यूरेसी और उसका कितना परसेंट एआई उसमें है या नहीं, वो निकाला जा सकता है, वो टेक्निकली निकाला जा सकता है। लेकिन जो मैंने पहला सॉल्यूशन दिया वो है हमारा फर्स्ट स्टेप, क्या हमें सच में उस ऑडियो को उस लेवल पे, सेकंड लेवल या थर्ड लेवल पे लेके जाना है वेरिफिकेशन के लिए के नहीं
जी। एक और श्रोता जुड़े हैं हरियाणा के हिसार से, राजेंद्र जी।
नमस्कार जी प्रियंका जी और पवन दुग्गल साहब को भी नमस्कार, जो डीडी वन के प्रेजेंटर हैं उनको भी नमस्कार जी, और विशेषज्ञ भी नमस्कार। मैं ये जानना चाहता था इस दुग्गल साहब से कि हमारे साथ हालात ऐसे कर दिए जाते हैं कि हम धोखाधड़ी में उसमें वो हो जाता, दिक्कत आ जाती है, इसके बारे में जानना था। नमस्कार।
देखिए आजकल तो धोखाधड़ी चारों ओर फैल चुकी है, और अगर आप थोड़े से भी केयरफुल ना हुए तो संभावित तौर पर आप साइबर फ्रॉड के शिकार हो जाएंगे। और अब तो साइबर फ्रॉड का जमाना भी चला गया है, आजकल का जो नया जमाना आया है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा निर्मित साइबर फ्रॉड का जमाना है। यानी कि अब साइबर क्रिमिनल्स आपको कहीं ना कहीं भ्रमित करेंगे, आपको गुमराह करेंगे। उन्हें मालूम है कि कोविड 19 के बाद आप डर गए हैं, उन्हें मालूम है कोविड 19 के बाद आप जल्दी पैनिक हो जाते हैं, तो इसी डर इसी पैनिक को हथियार के तौर पर आपका इस्तेमाल करते हैं। और अब तो इस साइबर फ्रॉड्स में डीप फेक का बहुत जबरदस्त प्रचलन है, डिजिटल अरेस्ट वाले जैसे केसेस सामने आ रहे हैं वहां पर भी। पहले तो ये साइबर क्रिमिनल्स खुद आते थे कैमरे के सामने, अब तो वो डीप फेक के अवतार को लेकर आते हैं, और अवतार इतने ज्यादा रियलिस्टिक नजर आते हैं कि आपको पता ही नहीं लगता कि साहब ये एआई से बात कर रहे हैं या किसी इंसान से बात कर रहे हैं। तो थंब रूल तो बहुत क्लियर है, आज साइबर क्रिमिनल्स बहुत ज्यादा आलसी हो गए हैं, कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, और आपको पुश करना चाहते हैं कि आपको पैनिक में वो कहें कि साहब कुछ ना कुछ जल्दी से कदम उठाइए वरना हम कार्रवाई करेंगे।
जी दुग्गल जी, जैसे आपने बताया जैसे डिजिटल अरेस्ट की बात की, तो ऐसे और कौन से हालिया मामले हैं जो श्रोता जानना चाहेंगे कि डीप फेक से रिलेटेड है?
आजकल डीप फेक से रिलेटेड बहुत सारे मामले आ रहे हैं। पहले तो मामले आ रहे हैं वो मामले जहां पर डीप फेक इसलिए बनाया जाता है ताकि किसी व्यक्ति विशेष की जो छवि है उसको नकारात्मक रूप से प्रभावित किया जाए। इसमें पब्लिक सेलिब्रिटीज इन्वॉल्व होती हैं, इसमें इनवेलेबली नॉन सेलिब्रिटी लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। दूसरे डीपफेक्स वो केसेस आते हैं जहां पर लोगों को गुमराह करके चीट करने का प्रयास किया जाता है। मेरे पास हाल ही में केस आया खारी बावली का, वहां पर दो पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर फील्ड में रहता है, एक दुकान पे रहता है। अब जो दुकान पे रहता है उसके सामने एक उसके वीडियो आता है जो दूसरे पार्टनर का है, जहां पार्टनर कहता है भैया इस वेंडर को 5 लाख रुपए दे दो, हमने सामान लेना है। वो 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर देता है। शाम को जब दोनों पार्टनर्स मिलते हैं और बात करते हैं तो पता लगता है कि दूसरे पार्टनर ने वीडियो कभी भेजी ही नहीं थी और वो केवल एक डीप फेक वीडियो थी जिसके शिकार ये पार्टनर बन गए। तीसरा, आजकल इस डीप फेक के माध्यम से कहीं ना कहीं आपके पैसे एक्सट्रैक्ट करने का एक नया प्रकरण शुरू हो गया है। बैंगलोर के एक पिता हैं, उनकी बच्ची है 7 साल की, और वो बच्ची को रोज अपने गेट पर छोड़ते हैं स्कूल की भी टैक्सी के लिए, और एक दिन छोड़ने के बाद आधे घंटे बाद उन्हें कॉल आता है जहां पे उन्हें कहा जाता है कि भाई हमने आपकी बच्ची को किडनैप कर लिया है, और अगर आप अगले 15 मिनट में 15 लाख रुपए नहीं देंगे तो 16वें मिनट में हम आपकी बच्ची को मार देंगे। वो कहते हैं मैं आपको मानता नहीं हूं, मेरी बच्ची से बात करवाइए। बच्ची से बात करवाते हैं, बच्ची रो रही है, बिल्ला रही है, कह रही है पापा मुझे ले जाओ, ये मार देंगे। जब वो कन्विंस हो जाते हैं कि मेरी बेटी खतरे में है तब वो पहले निगोशिएट करते हैं, जब निगोशिएशन में फेल करते हैं फिर अल्टीमेटली 15 मिनट से पहले पहले 15 लाख रुपए दे देते हैं। बाद में जब उन्हें पता लगता है कि साहब ये तो कुछ भी नहीं प्रकरण था, उनकी डॉटर सुबह से ही स्कूल में थी और उन्हें डॉटर की जो ऑडियो सैंपल्स थी उसके माध्यम से क्लोनिंग की गई थी और उन्हें डीपे का शिकार बनाया गया था। एक वो केस आए हैं। आजकल एक और केस आ रहे हैं जहां पर डिजिटल अरेस्ट में डीपे आना शुरू हो गया है। यानी कि एक वो केस आया जहां पर हमारे एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उनको बोर्ड उनकी बोर्ड मीटिंग चल रही है, उनको फोन पे फोन आता है कि साहब हम सुप्रीम कोर्ट से बोल रहे हैं और आप कृपया ऑन करिए क्योंकि आपकी हियरिंग चल रही है। वीडियो ऑन करते हैं, देखते हैं कि वहां पर उस जमाने के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वहां बैठे मुकदमा सुन रहे हैं और वो दिशा निर्देश देते हैं कि साहब आप 7 करोड़ रुपए जमा कराइए वरना आपके बदलाव हम कार्रवाई करेंगे। वो देखते हैं उसकी बात को, सुनते हैं और उनको कन्विंस हो जाता है कि साहब मैंने तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात को सुना है, उनकी आवाज को सुना है, उनकी ऑर्डर को सुना है, और इसलिए वो 7 करोड़ रुपए जमा करा देते हैं। बाद में पता लगता है कि वो भी डीप फेक और डिजिटल अरेस्ट के शिकार हो गए हैं। तो आजकल क्या है ना, साइबर क्रिमिनल्स बहुत ज्यादा शातिर हो गए हैं, जुगाड़ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट इतना ज्यादा प्रबल हो गया है कि वो नए नए तरीके अपनाते हैं ताकि किसी ना किसी प्रकार से वो इस नई टेक्नोलॉजी से डीप फेक से लोगों को भ्रमित कर उन्हें चीट कर सके, उनकी जेब से पैसा निकाल
सके। तो डॉक्टर, जैसे अगर ब्लैकमेलिंग के केसेस आते हैं तो ऐसे में सबसे पहले उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए?
सबसे पहली बात आपको समझना है कि आपके हाथ में एक ब्रह्मास्त्र है, उस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना है, और वो ब्रह्मास्त्र है राइट ऑफ डिस्कनेक्शन। कुछ भी हो फोन डिस्कनेक्ट करिए। कोई आदमी डरा रहा है, धमका रहा है, आपको विवश कर रहा है कि जल्दी जल्दी कुछ काम करो, तुरंत फोन कॉल कर दीजिए, डिस्कनेक्ट करिए। ईमेल से बात चल रही है, ईमेल से बाहर निकलिए। सोशल मीडिया में कम्युनिकेशन चल रही है, बाहर निकल के आइए। अपने आप को जितना आप डिस्टेंस करेंगे, जितना डिस्कनेक्ट करेंगे, समझ लीजिए कल सुबह फिर सूरज उगेगा, एक नया दिन फिर प्रारंभ होगा। तो अगर आप डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो आप फिर और उस दलदल में नहीं फंसते हैं और आप साइबर क्राइम के शिकार नहीं होते। और दूसरी बात, आज आवश्यकता क्या है कि लोगों को रिलाई करने के लिए, उनको लोगों को बिलीव करने के लिए, हम भारतवासी हैं, विश्वासी हैं, लेकिन अब वो समय आ गया कि अविश्वास को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें।
बिल्कुल, और मैं भुक्त भोगी हूँ। मुझे एक बार ऐसा कॉल आया कि अगर आपने फ्लाफ्ला अगर आपने ऐसा जमा नहीं कराया तो आपका ये जो कॉल है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा और आपका नंबर भी हम लोग बंद कर देंगे और आपका कंप्लेन कर देंगे अगर आपने 2 घंटे के अंदर ऐसा नहीं किया जो भी उन्होंने बोला। तो डर तो गई अंदर से, पर फिर भी था लेट मी वेट, देखती हूँ 2 घंटे। तो 2 घंटे बाद कुछ भी नहीं हुआ, मतलब वो वही था कि प्लान कर थी, उनकी कोशिश थी कि ऐसे फंसाया जाए एक और मुर्गे को और चीजें रखी जाए अपने सामने जो शर्तें हैं। डॉक्टर अनूप, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे हमने वीडियो की बात की, ऑडियो की बात की, अगर तस्वीर है तो उससे भी आप थोड़ा सा बोड़ तोड़ करके उसको पेश कर सकते हैं और लोगों को गुमराह कर सकते हैं।
जी बिल्कुल, तस्वीर में तो और बहुत कुछ चीजें हैं। इमेज बेसिकली फेक इमेजेस, मॉर्फिंग, ये एआई नहीं, इससे पहले भी होती थी, तब मॉर्फिंग के केसेस आते थे। अब एआई की वजह से ये और स्मार्ट हो गया है, और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गया कि अब पहचानना भी मुश्किल हो गया कि अब आपको पैटर्न्स भी इमेज में मिलने शुरू हो जाएंगे कि आपको लगेगा ये तो बिल्कुल स्ट्रीमलाइन है। तो जो मैंने अभी एक वर्ड बोला था, टेक्निकली हम जो इसमें टेक्नोलॉजी यूज करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे GAN, दैट्स अ जेनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क्स का हम यूज करते हैं, और डीप न्यूरल नेटवर्क्स का यूज करके इसमें एक टेक्नोलॉजी, एक एल्गोरिथम, अगर कुछ श्रोता जो सुनना चाहे तो वो है CNN, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। जैसे एल्गोरिथम्स का स्पेशली यूज किया जाता है, उसके थ्रू जब हम इमेज पे डालते हैं, उसको इमेज को आइडेंटिफाई करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ये इमेज जो बनाई गई, जिसकी लेवल ऑफ हाई एक्यूरेसी, स्ट्रीमलाइन बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, तो भी गलत है। यानी अब जो जेन्युइन इमेजेस होती हैं, तो उसमें जितना पैटर्न होता था गलतियों का और स्ट्रीमलाइन का, उसका एक परसेंटेज, उसका एक रेशियो निकाला जाता है टेक्निकली। और उसी तरीके से जब एआई की इमेज हमारे पास आती है तो हम उसको देखते हैं, उसमें और ज्यादा एक्यूरेसी नजर आती है।
अच्छा।
तो ऐसे केसेस भी हमारे पास आए कि फेक इमेज ज्यादा अच्छी थी, ओरिजिनल इमेज ज्यादा खराब थी, तो ये उल्टा था। तो ऐसे फेक इमेजेस को हमने टेक्निकली उस पर आइडेंटिफाई किया और हमें एग्जैक्टली पूरी डिटेल्स मिल गई कि अरे ये AI से।
बिल्कुल, सोशल मीडिया पर हम लोग एक्टिव तो हैं, लेकिन साथ साथ सतर्क रहना भी बहुत जरूरी है। श्रोता हमारे एक और जुड़े हैं जयपुर से, जितेंद्र जी। हेलो।
हेलो,
नमस्कार जितेंद्र जी।
हाँ हाँ, हमारा प्रश्न पूछे हम।
हाँ जी पूछे।
हाँ देखिए, कुछ मतलब दो अढ़ाई साल पहले कोई व्हाट्सएप किसी ने वो कर लिया था, तो उसका अपना फोटो लगा के हमसे 2,500 रुपया ले लिया था, ठीक है, कि बीमारी है ऐसे बोल के। फिर बाद में पता चला कि उसने किसी गलत फोटो लगा के और हमसे पैसा ले लिया। चलिए वो बात की बात हो गई। अभी मैं कल परसों बैंक में ही गया था, तो उसमें भी एक आदमी आया, 75,000 रुपया उसका भी, मतलब वो पहले 45,000 डाला, फिर 45,000 निकाल लिया, फिर ऐसे करके उसका भी हो गया। मैं डर गया सर, तो उसका देख के मैं डर गया। तो मैं सोचता हूँ कि अपना UPI डीरजिस्ट्रेशन कर लूँ और नेट बैंकिंग से ही और डेबिट कार्ड से ही काम चलाऊं, ऐसा मतलब मतलब मेरा विचार आ रहा है। और चेकबुक तो ऑलरेडी है ही है
जी। देखिए, ऐसा ही जो विचार है ना, स्वाभाविक है, लेकिन प्रॉब्लम है ना कि हम ये दुनिया छोड़ के हिमालय तो जा नहीं सकते संन्यास लेके, इसलिए इसी दुनिया में रहना पड़ेगा। हाँ, अगर आप रोजमर्रा के जीवन में साइबर सुरक्षा को जीवन जीने का हिस्सा बनाएं, अगर आप सतर्क सावधान हो जाएं, तब मुझे लगता है कि आप सुरक्षित हो सकते हैं। अगर आपने बैंकिंग ट्रांजेक्शन करनी है तो केवल सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर करनी है, जो प्रारंभ होती है HTTPS के साथ। नॉर्मल किसी प्लेटफॉर्म पर अगर आप करेंगे जो HTTP के साथ शुरू होता है, तो संभावित तौर पर आपको नुकसान हो सकता है। और अंधाधुंध होकर आपने कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना, ऐप करना भी है तो पहले तो उसका शोध करना है, पता करना है कि लोग क्या उसके बारे में कस्टमर रिव्यूज दे रहे हैं, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने हैं, उसकी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़नी है, इस बात को देखने के लिए कि वो आपका डेटा किस तरीके से इस्तेमाल करने वाला है। जितने आप कम से कम जानकारी देना शुरू करेंगे अपने बारे में, तभी लिखा ना जितने आप कंजूस हो जाएंगे उतना अच्छा है, कंजूसी अपने डेटा के प्रति, जितने कंजूस आप होंगे जितना नीड टू नो बेसिस पर डेटा देंगे उतना आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि बहुत कम चांसेस होंगे कि आप साइबर क्राइम के शिकार हो जाएंगे। वैसे भी कंजूस हो जाइए, शक्की हो जाइए, जीवन जीने में रोजमर्रा के जीवन में साइबर सुरक्षा को हिस्सा बना लीजिए। ये तीन मूल मंत्र हैं, अगर इन तीन मूल मंत्रों का आप पालन करें और अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल रोज करें कि जब अनावश्यक कोई कॉल आए तो तुरंत डिस्कनेक्ट करना है, कोई भी आपको गुमराह करने का प्रयास करे डिस्कनेक्ट करना है, और डरना नहीं है, किसी के पास इतनी क्षमता नहीं है कि हमें डरा सके और हमें साइबर क्राइम का शिकार बना सके। संकल्प, दृढ़ संकल्प जो है वो एकमात्र ही हम लोगों का मूल मंत्र होगा आगे बढ़ते हुए।
जी, हमारे पास व्हाट्सएप पे भी एक प्रश्न आया है अधिकार गुप्ता जी का, उनका प्रश्न है कि हाउ कैन पेरेंट्स आइडेंटिफाई अर्ली साइंस दैट देयर चाइल्ड इज बीइंग टारगेटेड थ्रू डीप फेक मैनिपुलेशन और ऑनलाइन इम्पर्सोनिफिकेशन। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, मतलब जो हमारे अभिभावक है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं बच्चों के साथ, अगर ऐसा हो बच्चे कई बार शेयर नहीं करते हैं डर के कारण, तो ऐसे में क्या करना चाहिए अभिभावकों को?
देखिए, आज बच्चे जो हैं एक नए दौर पे आ गए हैं, एक तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक वो दूसरे मार्ग पर चल चुके हैं, वो मार्ग है कॉग्निटिव कॉलोनियलिज्म का। ये लोग कॉग्निटिव गुलाम बनने को तैयार हैं, सो लॉन्ग एज उनका रोजमर्रा का काम हो जाए एआई के माध्यम से। तो अगर आपको बच्चे के बिहेवियर में कुछ चीज नजर आती है तो पहला संकेत है कि साहब हो सकता है बच्चे को बुली किया जा रहा है। मेरे पास हाल ही में केस आया सेंट्रल भारत का, जहां पर एक बच्चे ने 11वीं क्लास के बच्चों ने मिला के उसको बहुत छेड़खानी करी, वो बहुत तंग आ गया, उसने एआई से बात करी कि मुझे निवारण दीजिए। एआई ने कहा बेस्ट निवारण है कि भाई तुम अपनी नस काट लो, अपना जीवन खत्म कर लो। उसने बहस करी कि साहब मैं नहीं काटना चाहता हूं, 15 दिन बहस बैक एंड फोर्थ चलती रही, फाइनली जो एआई है विजयी हुआ। एआई सफल होने के बाद, क्योंकि उसने कहा नस काट दो, इस लड़के ने नस काट दी और उसके बाद सोचा कि मैं मर जाऊंगा। As luck would have it, उसके माँ बाप ने देखा कि वो पूल ऑफ ब्लड में पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल लेके चले गए, बच गया, लेकिन प्रॉब्लम है कि हाथ जो है पैरालिसिस हो गया है। अब इस दुनिया में, अब इस इशू में हम किसको लायबल बनाते हैं? इसलिए बहुत सारे ऐसे भीषण सवाल खड़े होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समर्पित अभी कोई कानून भारतवर्ष में नहीं है, ना ही उसको अकाउंटेबल बनाने वाला कानून है। हमने हाल ही में जनवरी में एआई अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क भी रिलीज किया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के लीगल प्रिंसिपल्स परिभाषित किए हैं जिसके माध्यम से एआई को अकाउंटेबल बनाया जा सकता है। लेकिन ये स्टेज टू है, पहला स्टेज यह है कि आप खुद अपने इंसानी रिश्तों के साथ उसकी ट्रस्ट जीतिए, उसको बताइए कि साहब ये खतरे हैं, और आप जितना अपने आप को सावधान सतर्क रखेंगे उतना ही अपने आप को एम्पावर महसूस करेंगे।
जी हाँ, मूल मंत्र यही। और एक और प्रश्न आया व्हाट्सएप पे, डॉक्टर अनूप जी आपसे पूछना चाहूंगी, सिवान बिहार से पंकज जी का सवाल है कि एआई से नकली वीडियो और आवाज बन रही है, आम आदमी कैसे पहचान करे कि डीप फेक है या असली, क्या तरीके? खैर आप ये बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से चाहूंगी आप संक्षिप्त में बताएं।
इसके लिए आपको कुछ बेसिक स्टेप्स लेने हैं। जब भी आपको लगे कि कोई भी आप वीडियो है, पहली चीज आपको उसको कुछ अलग लग रहा है, कुछ भी आपको डिफरेंट लग रहा है कि ये ऐसा हो नहीं सकता, फिर भी ऐसा हो रहा है। तो जनरली जितने भी एआई मिलेंगे आपके, जितने भी डीप फेक मिलेंगे, वो कहीं ना कहीं कोई मिस इन्फॉर्मेशन इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे, प्रोड्यूस कर रहे होंगे, वो रिलेटेड टू सेलिब्रिटीज या इन पर्सन भी हो सकता है। उससे उनका पीछे मोटिव क्या है, अगर आप थोड़ा सा मोटिव भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, वो आपको भ्रमित कर रहे हैं
जी।
वो आपको जो है कहीं फाइनेंशियल फ्रॉड की तरफ लेके जाना चाहते हैं, केस ऑफ इम्पर्सनेशन आ रहे हैं हमारे पास, है ना, कि वो आपकी छवि आपके नाम के बिहाफ पे कुछ और ऐसा डेटा, ऐसा इंफॉर्मेशन जनरेट करेंगे ताकि आपका डिफेमेशन हो, आपका जो है ख्याति पे कुछ हानिकारक कुछ प्रभाव पड़ सके, ताकि पूरी सोसाइटी, पूरा समाज आपको उस नजर से देखे। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और आज क्या है, जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको ना ये टेक्नोलॉजी यूज करना बड़ा अच्छा लगता है, तो टेक्नोलॉजी को लगता है कि हम कुछ भी करेंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे। देखिए, पूरा पुलिस के पास पूरा एनवायरनमेंट है, हमारे पास कंट्रोल्स है, सारे केसेस इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से हो सकते हैं, आज इक्विप्ड है, तो हम इन्वेस्टिगेशन को भी पढ़ाते हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग्स लीजिए, आप कुछ यूनिवर्सिटीज में कोर्सेज आए हैं जहां हम लोग खुद इंट्रोड्यूस करते हैं, वहां कुछ अगर आप इन सब चीजों की ट्रेनिंग लेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा।
बिल्कुल, और आकाशवाणी को सुनिए, और ऐसे एक विशेषज्ञ हमारे पास आएंगे जो आपको जागरूक करेंगे। तो श्रोताओं, तकनीक जितनी ताकतवर है उतनी ही जिम्मेदारी भी मांगती है, तो समझदारी, सावधानी से, सही तरीके से तकनीक का इस्तेमाल करें। डॉक्टर पवन और डॉक्टर अनूप, आप दोनों का धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आए और चर्चा की। अपने श्रोताओं का भी हम धन्यवाद करते हैं जो हमसे जुड़े। तो श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आज इतना ही। प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।